आनंद सबके साथ में उच्च से उच्च विहार करना चाहिए और वो फिर निष्काम होना चाहिए। निष्काम जो व्यवहार है वो कल्याण करने वाला, मुक्ति कर देने वाला है। ये सबके लिए ये बात है कि जैसे स्त्रियां जो है ये आपसी के बीच के वहां घर में सासू बहू के साथ में, बहू सासू के साथ में, इसी प्रकार से थी जो मुनि गुणस्थ है वो मालिक के साथ में, मालिक जैसे मुनि गुणस्थों के साथ में, मजदूर जो है ये मालिकों के साथ में, मालिक मजदूरों के साथ में, यानी सब के साथ में सबको उच्च से उच्च कोटि का व्यवहार करना चाहिए। उच्च से उच्च जो व्यवहार है उसमें दो चीज को त्याग है और दो चीज को ग्रहण है। त्याग जो है वो तो स्वार्थ को त्याग, यानी निष्काम भाव से उच्च व्यवहार होता है, और एक अभिमान को त्याग, किसी भी प्रकार को जो अभिमान है, अपने बुद्धि को अभिमान है, अपने में श्रेष्ठता को अभिमान है, वो सभी हानिकर है। तो अभिमान को त्याग और स्वार्थ को त्याग, मान बड़ाई प्रतिष्ठा की जो इच्छा वो भी स्वार्थ, और मैं अच्छा व्यवहार करूंगा तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये भी स्वार्थ। बदला कुछ भी नहीं जाना चाहिए, तो निष्काम भाव से सबके साथ में उसके केवल दो से व्यवहार करना चाहिए। और दो बात भयंकर ने की यह है कि व्यवहार के बीच के मां बिना पूर्व प्रेम होना चाहिए और समता रहनी चाहिए। व्यवहार बिगड़ता है झूठ से और व्यवहार बिगड़ता है क्रोध से। व्यवहार के मां अपने मन के प्रतिकूल वातावरण हुए उसको भगवान का विधान मानना चाहिए और हंसते रहना चाहिए अपने मन में। यह सुनना चाहिए कि भगवान ये तुम्हारी परीक्षा लेने के वास्ते, तुम्हारे को ठोस बनाने के वास्ते ही ये परिस्थिति की है। मालिकों को मजदूरों के साथ में, अपने गुमास्तों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए कि ये बात सोचते रहना चाहिए जैसा उनका हित हो। जैसा मनुष्य अपना हित सोचता है, जैसे एक संस्था का हित सोचता है, उसी प्रकार से थी और सबका हित सोचना चाहिए। संसार को सामने रख करके सबका हित सोचना चाहिए। किस प्रकार से सोच के जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार बड़ा उच्च कोटि का होता है। अपने साथ बुराई करने वाले के साथ में भलाई करना, सो भी उसके हित के लिए। मैं भलाई करूंगा तो उसको भी मेरे साथ भलाई करनी पड़ेगी, इस उद्देश्य नहीं। चाहे वो भलाई करे चाहे बुराई करे, अपनी तरफ से सबके साथ में भलाई करनी चाहिए। परिणाम में उनका कैसे हित हो है, इस दृष्टि से सबसे व्यवहार करना चाहिए। अपने को कोई गाली दे तो उसका उत्तर गाली से नहीं देना चाहिए। यह समझ आता है कि इसका माथा खराब हो रहा है, ऐसा समझ कर करके, और जैसे शनिपात के रोगी पर वैद्य एक प्रकार से थी दया करता है, इस प्रकार उसको दया का पात्र समझना चाहिए। जो कोई मारपीट करे तो बदले में मारपीट नहीं करता, और यदि लड़का दंड हो मारपीट करे तो माता पिता उसके हित के लिए शासन करते हैं, कहीं मारपीट भी करते हैं तो उसमें लड़के का हित सोचते हैं। इसी प्रकार से थी मालिकों को गुमास्ते का हित सोचना चाहिए कि इसका हित किस विषय में है। डॉक्टर जो है मवाद पड़ जाते हैं तो चीरा भी देता है और ऑपरेशन करता है, उससे नियत अच्छी रहती है कि किस प्रकार से थी इसके जल्दी से जल्दी लाभ हो। तो यही बात एक प्रकार से सोचनी चाहिए। समझो थोड़ी बार के लिए, जैसे गीता प्रेस है और उनका एक प्रकार से थी मजदूरों से संबंध है, और दूसरे बाहर के जो कारखाने जो एक प्रकार से उनके साथ डायरेक्टर संबंध नहीं है, ठेकेदारों से संबंध है, तो ठेकेदारों का उनके साथ फिर भी ये सोचना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कारखाने बंद हो जाए तो उसके लिए तो कभी भय नहीं करना चाहिए। तो कल बंद होने वाले हो तो आज ही हो जाए, मन में इस बात का विचार करना चाहिए कि बहुत से गरीब आदमी बेकार हो जाएंगे और वो भूख मरेंगे, वे भी सब अपने भाई हैं, तो उनका हित किस तरह से होए होगी तो वही बात जो होने वाली है। और वो पहले से भगवान के ज्ञान में निश्चय है, उसका कोई उलट फेर कर नहीं सकता, फिर अपने तरफ से उच्च व्यवहार करना चाहिए। और जैसे किसी दुखी आदमी के ऊपर उसको दया का पात्र मान के उसके साथ में व्यवहार किया जाता है, ऐसा व्यवहार सबके साथ में करना, हर एक प्रकार से थी उनका किस में हित है ये सोचना चाहिए। संस्था के लिए कारखाना उठाना अच्छा समझा जाए तो उठाना चाहिए, साथ साथ में उनका भी हित सोचना चाहिए कि संस्था का कोई नुकसान नहीं किंतु उनके नुकसान न हुए, ऐसी भी बात ख्याल में रखनी चाहिए। और इसको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे गरीब आदमियों का नुकसान न हुए, ऐसा ख्याल रखना। सब हमारे भाई हैं, जैसे हमारा निकटवर्ती कुटुंबी आदमी हो इसी प्रकार उनको समझना चाहिए। अपने घर के आदमी भी तो कोई समय के बीच में भूल से थी खराब व्यवहार कर बैठते हैं तो उसको निकाल थोड़ा दिया जाता है। हर प्रकार से थी उनका हित तो ऐसी चेष्टा की जाती है, जो समझदार होते हैं ऐसी चेष्टा करते हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य के गीता प्रेस और जैसा हम लोग हित सोचते हैं उससे अधिक हित उनका सोचना चाहिए। गीता प्रेस तो भगवान की प्रेस है, वो तो खुद अपने आप ही संभालता है, हम तो भगवान के सब गुमास्ते हैं। भगवान कि जैसे मर्जी हो ऐसा करना चाहिए, भगवान हम लोगों के हृदय में स्थित होकर के प्रेरणा करते ही रहते हैं, उनसे क्रीम जो प्रेरणा वो हमारे लिए परम हितकर है। उसमें अपना व्यक्तिपन का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का मन के बीच के वहां अभिमान कर करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपना जो प्रभाव है उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति का, अपने प्रभाव का, अपनी शक्ति और अपने में जो यत्किंचित प्रभाव है वो भगवान का दिया हुआ है और संसार के हित के लिए दिया है, किसी के अहित के लिए नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। अपने पास में जो बुद्धि है, भगवान ने जो बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, रुपया दिया है या शक्ति दी है, वो सब चीज सबकी सेवा के लिए, सब में भगवत भाव रखते हुए, सब नारायण को स्वरूप है, सबकी सेवा ही नारायण की सेवा है, ऐसा समझ करके कि सबसे उच्च कोटि का व्यवहार करना चाहिए और भीतर में हंसते रहना चाहिए, बाहर में हंसी प्रकट नहीं करती। हंसना इस बात का है कि भगवान की ये सब लीला है, समय समय के ऊपर भगवान अनेक प्रकार की लीला दिखाते हैं। उस लीला का तत्व है खुद भगवान ही जानते हैं और दो नंबर में यत्किंचित उसके भक्त जानते हैं, और हम लोग तो केवल शब्दों की सुनी सुनाई बात को अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा समझते हैं काम में जाते हैं। कहीं अपने में बुद्धि का अभिमान नहीं करना, कहीं अपने में पद का अभिमान नहीं करना, अपने श्रेष्ठ बर्ताव का कभी अभिमान नहीं करना। अभिमान तो किसी भी बात का मनुष्य को नहीं करना चाहिए, अपने जाति का, वर्ण का, आश्रम का, अपने पद का, रुपयों का, बल का, शक्ति का, किसी भी प्रकार का अभिमान है वो पतन करने वाला है। जो कुछ अपने में है उस संसार के हित के लिए है, हम सब प्रकार से सबका हित करते रहे और इस बात को दूसरा कोई नहीं समझे तो मैं समझे, हमको समझाना थोड़ा ही है। समझने वाले जो भगवान वे तो सब समझते ही हैं और किसी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी तरफ से अपने शक्ति के अनुसार सबके साथ में अच्छा उच्च व्यवहार करना चाहिए, किसी पर शासन करें तो पद के अभिमान से नहीं, उसके हित की दृष्टि से उस पर शासन करना चाहिए। उसकी हित की दृष्टि से किसी भी प्रकार का युक्ति संगत शासन हम कर सकते हैं। हमारे शासन में असत्य व्यवहार नहीं होना चाहिए, असत्य भाषण नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक प्रकार से मिथ्या जो है उसको गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। अपने व्यवहार का, अपने अच्छे व्यवहार का दूसरों के ऊपर अच्छा असर पड़े ये इच्छा नहीं रखनी थी। अच्छे व्यवहार का अच्छा ही असर होता है, किंतु कहीं न पड़े तो ये मन के वहां इच्छा नहीं रखनी चाहिए, आशा नहीं रखनी चाहिए। ये आशा है ये भी एक प्रकार से थी शैतान भाव है। सबसे उत्तम यह बात है कि सब में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। सो अनन जान की असी मति न तरे हनुमंत, मैं सेवक सतरा तरे रूप राशि भगवंत। हे हनुमान, वे मेरा अनन भक्त है जिनकी मतिमान बुद्धि इस सिद्धांत से कभी हटती नहीं। क्या सिद्धांत? कि जो चराचर है सब भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं सबका सिर। अब यथाशक्ति इस भाव को हर वक्त कायम रखना चाहिए। ये भगवान का उत्तम दर्जे का भजन है, भगवान की उत्तम दर्जे की सेवा है, इससे लाभ के सिवा कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। और दुनिया के लाभ के अंदर ही हमारा लाभ है, वही हमारा असली लाभ है। इससे चित्त में प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है। यदि कोई समय की वहां अशांति हुए, अप्रसन्नता हुए, तो वहां हमारी समझ की गलती है। न्याय तो यही बात है कि उसको प्रसन्नता रहनी चाहिए, शांति रहनी चाहिए, उसके व्यवहार से थी। देखने वाले पर असर पड़ता है, पर जिसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता है उस पर तो अच्छा असर होता ही है। इसी प्रकार हम लोगों को सबके साथ में ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ में उच्च कोटि का व्यवहार करना चाहिए, अपने घर के वहां भाइयों के साथ में भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए, अपने घर के वहां औरतों के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, और माता बहनों को भी परस्पर के बीच में इस सिद्धांत को समझ करके सबके साथ में उच्च कोटि का व्यवहार करें। जो छोटे कायदे की भूमि की चाली कर उसके विषय में ये विचार करना चाहिए, ये अपने माता पिता को छोड़ करके तुम्हारी शरण आई है, तुम्हारे आश्रय पर आया, तो इसके साथ में अपनी पुत्री से भी बढ़ करके इसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। कहीं ऐसा हो जाए कि पुत्री का और बहू का विवाद हो जाए, तो न्यायुक्त जो पक्ष हो तो अपने बहू की लेनी चाहिए, और पुत्री की पक्ष न्यायुक्त हो तो वहां मौन हो जाना चाहिए, और बहू को यह समझना चाहिए कि मेरी यह धर्म की मां है सास, तो ये जो कुछ कहती है हमारे हित के लिए कहती है, उसके व्यवहार में अपना अहित तो कभी समझना ही नहीं चाहिए। और मुझसे ये मेरी सास सेवा कराना स्वीकार कर ले तो ये मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे सौभाग्य की बात है। ये जो बड़े हैं इनकी मेरे पर दया है वो तो है ही, और यह विशेष दया है जो मेरी सेवा को स्वीकार कर, मैं तो इनके शरीर की सेवा कर रही हूं, ये मेरा आत्म उद्धार के लिए चेष्टा कर रही है, क्यों इनकी मैं यदि निष्काम भाव से सेवा करूंगी तो उसका फल होगा कि मेरी आत्मा का उद्धार होगा, तो ये मेरी आत्मा के उद्धार करने वाले हुए, और मैं केवल इनके शरीर की सेवा करने वाली हुई, तो इनका मेरे पर विशेष उपकार है। मेरे पति से जो मेरा हित होता है वो भी इनकी कृपा से होता है, मेरे पति के जन्मदाता तो यही है कि जिससे मुझको सुख मिलता है, लौकिक सुख भी मिलता है पति से और पारलौकिक सुख भी मिलता है, तो उसकी जन्मदाता मूल अपने सास है और ससुर है, तो उनकी और विशेष सेवा करनी चाहिए। सेवा मिल गई तो ये समझना चाहिए भगवान ही मिल गई। इसी प्रकार से थी सब भाइयों को अपने भाइयों के साथ में इसी भाव को रख करके उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज भरत के साथ में व्यवहार करते हैं कि भरत तुम विचार लो, मेरे लिए तुम जो कहोगे वही मैं कहूंगा, सब बात तुम सोच लो। भरत ने सोचा प्रभु मैं तो बालक हूं, मैं आपको संकोच में डाल करके ये नहीं कहना चाहता कि आप चलो और अयोध्या का राज करो, जिस किस प्रकार से होगा आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। 14 वर्ष की अवधि के शेष होने पर 15 वर्ष के पहले दिन आपको पहुंचना चाहिए, नहीं पूछोगे तो मैं अग्नि में प्रवेश करके भगवान ने कहा बहुत ही मैं ठीक देता हूं। राज को गेंद बना करके भरत जी भगवान के पास तपिंग थे, भगवान राम भरत के पास में आंकर के बीच में भरत ने इसी में अपनी जीत समझी, हर में अपनी जीत समझी। तो इसी प्रकार से थी परस्पर भाइयों को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। भाइयों का बंटवारा एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता, तो जिस समय बंटवारा हुए उस वक्त में भगवान श्री राम और भरत जी को याद कर लेना चाहिए, उन्होंने कैसा व्यवहार किया। ऐसा ही व्यवहार हम लोगों को अपने भाइयों के साथ में करना चाहिए। भगवान की भक्ति के विषय में, प्रेम के विषय में कहने के लिए प्रेरणा हुई, तो आप लोगों की प्रेरणा के अनुसार ही कहा जाता है। भगवान ने बहुत से श्लोक गीता में कहे हैं, जिसके एक श्लोक के धारण करने से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। ऐसे ऐसे गीता के वहां बहुत से श्लोक हैं। जैसे गीता की 10वें अध्याय के वहां 9 के और 10 के श्लोक में जो बात बताई है वो वैसी है। भगवान गीता की 10वें अध्याय के 9 के श्लोक में कहते हैं, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम अकर्षण तस्य माया नित्यम तुषण के चरमती। इसका शब्दार्थ यह है, मच्चिता जिन पुरुषों का मुझ परमात्मा में चित है वे मच्चिता, माने भगवान में जिनका चित निरंतर निवास करे उसको भगवान कहते हैं वे मच्चिता। और मद्गत प्राण जिनका जीवन मेरे लिए है वो मद्गत प्राण। और बोझ यानी तो परस्पर भगवान कहते हैं कि परस्पर में आपसे में मेरे प्रेम का जो तत्व है उसको समझाते रहते हैं वो बोझ यंत परस्पर। और कथियन कश्य माम नित्यम, भगवान कहते हैं कि मेरे गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातें, मेरे भक्तों में जो निरंतर कथन करते रहते हैं वह कथियंत समय नित्यम। तुषम टीचर मन टीचर, और इस प्रकार स्थिति साधन करते हुए हर वक्त संतुष्ट रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं, सदा आनंद में मस्त रहते हैं, वो नित्य मेरे में संतुष्ट है समझे जाते हैं। अरमंती है और मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा मुझ परमात्मा में जो रमन करते हैं वे तो रमंती च। ये शब्दों का अर्थ आपको बताया, अब इसका भाव समझना चाहिए। तो मच्चिता यानी जिनका मेरे में निरंतर चित निवास करे, जहां मन ज्यादा वहां मुझको ही देखे, जिससे बताया कि योग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सत्यमेव न प्रणश्यति। भगवान गीता की 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं कि यूमन पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, अपने हृदय से अपने मन से मुझको सब जगह देखता है, जहां मन जावे वहां मुझको देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति और सबको मुझ परमात्मा के अंदर देखता है, और तस्य अहं न प्रणश्यामि उससे मैं कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता, मैं उसको देखता रहता हूं और वह मुझको देखता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे बहुत से बादल है, उन बादलों के अंदर आकाश व्यापक है और सारे बादलों का समूह आकाश के एक अंश में है, तो बादलों में आकाश को देखना, आकाश में बादलों को देखना, ये निराकार प्रकृति साहब साहब को बताया। और साकार प्रकृति जैसे जहां दृष्टि जावे वहीं भगवान को देखे, जैसे गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण को सब जगह देखा करती थी, पत्ते पत्ते से मां भगवान को देखा करती थी, मानो सारा संसार उनके लिए आरती बन गया था, दर्पण बन गया था। जैसे मनुष्य दर्पण में अपना मुख देखे, ऐसे भगवान को सब जगह देखा करती थी, यानी उनके नेत्रों के बीच के मां भगवान बस गए थे। और सारे ब्रह्मांड को भगवान के अंतर्गत देखा करती थी, जैसे अर्जुन ने सारे विश्व को भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर में देखा। दूसरी बात बताई जाती है कि जैसे अज्ञानी आदमी को बाहर से भीतर से संसार ही हर वक्त दिखती है, बाहर में देखता तो संसार और नेत्र बंद करके भीतर में मन से देखता है तो संसार। इस प्रकार भक्त जो है वो सब जगह के मन संसार को नहीं देख करके भगवान को देखता है, बाहर में भी भगवान भीतर में भी भगवान। जैसे वही अंतर से भूताना मतर अंतर व्यवसाय, गीता की 13 अध्याय के 15 श्लोक के पूर्वार्ध में कहा, ये निराकार फर्क कि जो मनुष्य एक प्रकार से सारे भूत प्राणियों को या सारे भूत प्राणियों में उस ब्रह्म को देखता है, परमात्मा को, और परमात्मा में सारे भूत प्राणियों को देखता है, अथवा सारे भूत प्राणियों के बाहर में भी परमात्मा को और भीतर में भी परमात्मा को देखता है, और सब भूत प्राणी भी परमात्मा को स्वरूप है ऐसा अनुभव करता है। ये निराकार फर्क आपको बताया, किंतु साकार फर्क के हिसाब से भगवान जिसके हृदय में बस जाते हैं उनको हर वक्त भगवान दिखते रहते हैं। भगवान मानो हमारे आंगन के मन घूम रहे हैं, हम मन से देख रहे हैं भगवान को, अपने साथ ही हर वक्त देखे, चलते उड़ते बैठते सोते खाते पीते मन से देखे। सुबह तो सोने के समय में भगवान को याद करते करते ही शयन करें, चलने के समय में मानो भगवान हमारे साथ ही चल रहे हैं, बैठने के समय में